ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर श्री मोदी ने कहा कि इस ऑपरेशन के तहत न केवल आतंकवादियों के शिविर नष्ट किए गए बल्कि उनके नापाक मंसूबों और दुस्साहस को भी परास्त किया गया। प्रधानमंत्री ने ये संदेश पंजाब के आदमपुर वायुसेना केंद्र पर वायुसेना के योद्धाओं और जवानों से बातचीत करते हुए दिया।
9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए हैं, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई है। आतंक के आंकड़ों को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश।
प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और कार्यकुशलता की सराहना की।
ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है।
हर उस सैनिक का संकल्प है जो देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये हर शहीद की शपथ है और हर नागरिक की आवाज है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। बौखलाए दुश्मन ने आदमपुर एयरबेस पर हमला करने का प्रयास किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने एक बार फिर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि मैं यहां वीरों के दर्शन के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर होगा। श्री मोदी ने कहा कि अब हम घर में घुसकर मारेंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने यात्री विमानों को ढाल बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और सिर्फ 20 से 25 मिनट के भीतर सीमा पार के ठिकानों पर हमला करके ये दिखाया है कि आधुनिक तकनीक से लैस एक पेशेवर बल ऐसा कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज से 11 दिन का राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान शुरू किया गया है। मुख्य रूप से तिरंगा यात्रा के नाम का ये अभियान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की सफलता को लोगों तक पहुंचाएगा। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन तथा भाजपा के प्रमुख नेता शामिल होंगे। ये अभियान 23 मई तक चलेगा। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले में शुक्रू केलर जंगल इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी ने आकाशवाणी समाचार श्रीनगर को बताया कि मारे गए आतंकवादी लश्कर ए तैयबा या TRF गुट के हो सकते हैं। इनकी पहचान की जा रही है। इससे पहले पुलिस, सेना और CRPF के संयुक्त दल ने इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान और घेराबंदी शुरू की। अभियान के दौरान आतंकवादियों की ओर से भारी गोलीबारी के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये अभियान जारी है। देश का रक्षा बजट 2013-14 में 2,53,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 6,81,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि रणनीतिक सुधारों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और नवाचार ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। इससे भारत एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर विश्वसनीय रक्षा निर्यातक बन गया है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पूर्वोत्तर राज्यों को देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। नई दिल्ली में गारो, खासी और जैंतिया हिल्स क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मेघालय के स्व सहायता समूहों के सदस्यों से बातचीत में श्री धनखड़ ने कहा कि मेघालय के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 13% की वृद्धि हुई है। उन्होंने लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत हुई प्रगति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन, खनन, IT, सेवा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में अपार प्रतिभा और अपार संभावनाएं हैं। श्री धनखड़ ने कहा कि महिलाएं आगे आती हैं तो संतुलित आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आज सेवानिवृत्त होंगे। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने औपचारिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के नाम की अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश की है। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के 4 गांवों के लोगों ने कल रात इथेनॉल से बनी शराब पी ली थी। मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच 2 आबकारी अधिकारियों, 1 पुलिस उपाधीक्षक और 1 थाना प्रमुख को निलंबित कर दिया गया है। अब तक सरगना समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के 1 सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। उधर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने हादसे पर मुख्यमंत्री की आलोचना की है। कोयंबटूर महिला अदालत ने पोलाची में यौन उत्पीड़न मामले में सभी 9 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने राज्य सरकार को यौन उत्पीड़न मामले में जीवित सभी 8 महिलाओं को 85 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये मामला फरवरी 2019 में सामने आया था, जब कॉलेज की एक 19 वर्षीय छात्रा ने यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 12वीं कक्षा के 88.39% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.41% अधिक है। आकाशवाणी से बातचीत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि 12वीं कक्षा के परिणामों में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है।
The result is 88.39%, which is 0.41% more from last year. The girls have actually performed better than the boys. Girls have passed 91.64%, and the result of the boys was 85.70%, which was 5.94% more than that of the boys. And the result of the CWSN student was 93.15%. Shortly, we will issue the verification process also. If any student is not satisfied with our result, they can ask for the photocopy. And they will identify the kind of problem which they are finding in their answer book. They will inform it to the CBSE and CBSE will rectify if there is a problem.
10वीं कक्षा के 93.66% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.06% अधिक है। 10वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बाजी मारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 12वीं और 10वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम छात्रों के संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिचायक हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज जिम्नास्टिक की स्पर्धाएं आयोजित हुई। रिदमिक जिम्नास्टिक हुप फाइनल में महाराष्ट्र की परीना ने स्वर्ण पदक जीता।
मैं इंटरनेशनल रिदमिक जिमनास्ट हूँ और मैं खेलो इंडिया गेम्स में 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स जीती हूँ। खेलो इंडिया का सब ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत अच्छे थे। यहाँ का स्टेडियम बहुत अच्छा है और इधर का खाना भी बहुत अच्छा है। अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है एथलीट्स का।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 36 स्वर्ण, 28 रजत और 25 कांस्य पदक के साथ कुल 89 पदक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। आज राजस्थान ने लड़कों की 30 किलोमीटर साइकिलिंग में सभी पदक हासिल किए। राम अवतार ने स्वर्ण, महादेव ने रजत और महावीर ने कांस्य पदक जीता। देश में खुदरा मुद्रास्फीति की दर जुलाई 2019 के बाद से अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। आज सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 3.16% रही, जो मार्च में 3.34% थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।